अब तीसरे को देखिए, अब आप गैस कर सकते हैं तीसरे कौन है। वइन्न मिन हालमा यहबितु मिन खशयतिल्लाह। ये तीसरी किस्म के सबसे अजीब लोग, इनका हाल क्या है कि दूर तो ये भी थे, पत्थर सख्त दिल थे ये भी, बट हुआ क्या कि ये गिर पड़े। लेकिन अभी देखिए कोई इनसे खैर नहीं निकली, ये गिर जाते हैं मगर टूटते नहीं है अभी। ये हैं वो लोग जो इबादत कर रहे हैं अभी लेकिन तासीर कोई नहीं, नमाज पढ़ते हैं फायदा कोई नहीं हो रहा, स्ट्रगलिंग फेज। आपके बच्चे कहेंगे मुझे तो नमाज से कुछ नहीं मिला, मैं कुरान पढ़ता हूं मेरा तो दिल ही नहीं लगता उसमें। बट कहा करते जाओ एक दिन तुम अंदर से टूटोगे। आज के दौर में अगर आप देखें ना तो ये तीनों मिसालें आपके मेरे इर्द गिर्द हैं। और ये जो तीसरी मिसाल है ना, इसके ऊपर आप इस्लाम का थर्ड फेज लिख लें, मिनिमम फेज तो मुसलमान होना है, यानी कह लीजिए ये नाम के मुसलमान है। अब इनके दिल ना तो मस्जिदों में लगे हैं, ना मदरसे इनको अच्छे लगते हैं, ना दाढ़ी से इनको प्यार हुआ, ना निकाब इनको अपना लगता है, ना हिजाब इनको अच्छा लगता है, अबाय से तो इनका दिमाग ही घूम जाता है। तो ऐसे लोगों पे काम करने की जरूरत है इस दुनिया में जहां मैं और आप रहते हैं ना, इन तीनों किस्म के लोग हैं। मुझे आपको क्या करना है, ढूंढना है। देखिए ये जो पहली वाली किस्म के लोग हैं ना, ये खुद ही ढूंढ लेते हैं, अल्लाह ताला हक वालों को जरूर हक दिखाता है, तड़प है ना। यानी ये जो अबू बकर जैसे लोग हैं ना, इनको ढूंढना नहीं पड़ता कि आओ दर सुन लो, आओ कुरान सुन लो, आओ मस्जिद में आओ नमाज पढ़ो नमाज, नहीं ये खुद ढूंढ लेंगे। दूसरी किस्म के लोग भी हादसाती मुसलमान हैं, उमर जैसे, कोई हादसा आएगा टूटेंगे। मुझे और आपको किस पे काम करना है। और वल्ला ही अगर हम अपने आज के इस माशरे को देखें तो हमारे इर्द गिर्द ज्यादा लोग कैसे हैं, क्या ये तीसरे ही नहीं है। नमाजी हैं बट असर कोई नहीं, रोजे रखते हैं कोई नहीं, हज कर आते हैं फिर हज की रस्में निभाने में अपनी नमाजें भी छोड़ देते हैं, हज का मकसद भूल के दोबारा आके दुनिया में तोहफे तहाइफों में पढ़ के और अपनी दुनियादारियां निभाते हैं। कुरान से कटे कई लोग हज पे गए कुरान में वापस ही नहीं आए, क्या ये हज कबूल है, अल्लाह जाने उसके बंदे जाने। लेकिन वो नेकी जो आपको दूसरी नेकी से रोक दे, क्या बता रही है कि वो बस एक रस्म पूरी करके आपने नाम के साथ एक टाइटल लगा दिया। असल में देखें, अब आप और मैं अपनी उंगली इस तीसरे हिस्से पर डाल के कहें, मुझे और आपको जिनको दीन की खिदमत का शौक है, हमें ये आखिरी गिरोह से मोहब्बत करनी है। और इस आखिरी गिरोह में अगर आप देखें ना, तो चार मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं। नंबर एक औरतें, विमेन, औरतें अपनी मिजाज में ना कमजोरी होती हैं, डिट्रैक्ट भी बहुत होती हैं, लेकिन इन्हीं औरतों के हाथों में बच्चे हैं। मैं जब किसी अनजान सी बहन के हाथ में बच्चा देखूं तो मेरा तो दिल धब जाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे को माँ ने छुरी पकड़ा दी। मैं कहती हूँ ये लड़की जिसको भी खुद पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं आता, इस बच्चे को क्या अब सिखाएगी। और ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में अल्लाह ने बच्चे दे दिए कि जिनको अभी तक खुद इंसान बनना भी नहीं आया। लेकिन देख लीजिए इस वक्त अगर आप में काम करें, और अल्लाह का शुक्र हम खुद भी औरतें हैं, किसी मुल्क मुआशरे कौम की हालत कब बदलती है, जब वहां की औरत की हालत बदलती है। तो मेरे आपके लिए अगर अल्लाह आसान कर दे 10-10 लोगों के साथ मिलना बात करना, उनको दावत देना, मेरी बहन मेरी खाला मेरी चची मेरी फला मेरी दोस्त करके उनको एक दफा इस कुरान के पानी से जायका दे दे, कहां के हम खुद ही मजबूर बने हो। दूसरा यूथ, आज की यूथ लॉस्टेड है, क्योंकि यूथ को भी जब रास्ता मिल जाता है ना तो वो फिर ज्यादा इधर उधर नहीं देखते, वो कहते हैं आज गुनाह करते हुए नहीं डरते थे तो आज नेकियां करते हुए फिर क्यों डरे। घर से भागते हुए बाप की इज्जत का ख्याल नहीं था तो आज अगर मस्जिद जा रहा हूं तो फिर मुझे बाप की इज्जत की क्या परवाह है, वो चल पड़ते हैं। तीसरी चीज वो नॉन मुस्लिम जो इस्लाम की तरफ माइल है, इंटेंडेड बहुत उनका रुझान है, जो गैर जानिबदार है और बाकी ढूंढ रहे हैं। और इन तक पहुंचने के लिए बेस्ट थिंग वन बाय वन थिंग, और इसी तरह नेट मीडिया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाइए कि इन लोगों तक पहुंचिए। फिर है चौथा और आखिरी गिरोह जो इस वक्त दुख के साथ कहना पड़ता है बहुत सारे हैं, वो मुसलमान जो किनारों पे खड़े हैं दीन के। सूरत हज में आप पढ़ेंगे वमिन अन्नास मन यअबुदु अला हर्फिन, यानी नाम के मुसलमान, वो मस्जिदों और मदरसों में जाते हुए ऐसे डरते हैं जैसे कोई मरीज डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए डरे, कोई वेवलेंथ नहीं मिलती, उनको लगता है हम पे तनकीद होगी हमारे, वो कहते हैं हम जुमा भी नहीं पढ़ते और जहां जाएंगे तुम्हें नहीं बताना। हम उस मस्जिद में जाएंगे जो हमें बिल्कुल नहीं जानता, अपने शहर से जरा दूर की जगह में जाके पढ़ेंगे, लोग कहेंगे अच्छा जी ये शेख साहब जुमे के लिए आए हैं, कल तो रात कहीं और देखे गए। यानी ये वो लोग हैं जिनको दीन से खौफ है। वो कहते हैं नहीं ये इस्लाम फोबिया है और ये फंडामेंटलिस्टिक हैं और बुनियाद परस्त हैं, ऐसे लोगों का हाथ पकड़िए। आज ज़रूरत ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने की जहां पूरी दुनिया से सच्चे और खिदमत के जज्बे में चूर मुसलमानों को जमा किया जाए, जो वाकई इस्लाम को असल इस्लाम की तरह समझे। और जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना आज दुनिया में, क्रिश्चियन ज्यू मुसलमान, ये जायज़ नहीं वो नहीं जायज़, इन सारे इश्यूज को सॉल्व करें। आपको तो कि मीडिया पे वो चमकते हुए चेहरे आपको अमूमन दिखते हैं जो मशहूर हो जाते हैं, अल्लाह ही जानता है कि उन अल्लाह के पास उनका क्या मुकाम है। सारे नहीं मैं कह रही, लेकिन आज अमूमन वो लोग जिन्होंने इस वक्त भी इस दौर में दीन की असल थामी हुई है ना, वो किसी मदरसे में बैठे 10-15 लोगों को पढ़ा रहे हैं और किसी कोने खुदरे में बैठे, उनको उस मदरसे से निकाल कर आप मीडिया पे ले आए, ये करना है मैंने आपने। वो आज दीन की खिदमत कर रहे हैं लेकिन गुमनाम है, और जो नाम वाले हैं उनका कोई पता नहीं कि वो किस बेस पे क्या कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि अपने आप को तड़पाएं, क्योंकि उनके दिल सख्त हुए तो फिर हमारे भी सख्त हो जाएंगे। तो मुझे असल में लगता है हमने अभी कुछ नहीं किया। मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, मैं दुखी होकर सोती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह अभी किया क्या हमने, जिनको पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं पूरा काम कर पा रहे, हम जो सीख रहे हैं वो ही नहीं पूरा सीख रहे, जो सिखाना चाह रहे हैं वो ही नहीं सिखा रहे, आगे जो कोशिशें करनी है अभी उसी में इतनी मजबूरियां हमारे पांव पकड़ी हुई है, हमने कल क्या कोई बड़ा काम करके दुनिया से जाना है। हालांकि हमें तो इस वक्त इस्लाम को दुनिया की सबसे ऊंची आवाज बना देना चाहिए था, चैनल्स हमारे चले, गूगल पे सर्च में इस्लाम के क्लिक्स आए और इस्लाम दुनिया की सबसे ऊंची आवाज आ जाए। लेकिन ये सब होगा कब, जब हम अपना सब कुछ एक जगह जमा करेंगे, सबसे पहले अपनी स्किल्स, अपना इल्म, अपना टैलेंट, दुआएं, माल, औलादें, बच्चे, और सब दीनदारों से ये दरख्वास्त करके कि आप जरा अपने नाम को पीछे डाल के खुदा के लिए इस प्लेटफॉर्म से जरा जमा तो होके देखें। जिस दीनदार की जो स्पेशलिटी उससे वो काम लें, तजवीद जिसकी अच्छी उससे तजवीद कराएं, जिसकी ग्रामर अच्छी उससे ग्रामर कराएं, और जिसको किरत अच्छी है उसे तिलावत कराएं, आप देखेंगे फिर इस्लाम फलेगा। फिर आपको फिर ये गूगल का नाम जितना मारूफ है, व्हाट्सएप कितना मारूफ है, इनकी जगह मुसलमानों के नाम होंगे। ये मैसेज है इस आयत का। और आयत देखिए कि हम कह रहे थे कि ये 5 मिनट में आयत पढ़ लेनी है मैंने, इतनी आसान आयत लगती है। हालांकि मैंने अभी वल्लाह ही आपसे कोई इधर और उधर की बात नहीं की, अभी तो मैं उसके आयतों के लफ्जों पर खो रही हूँ, इधर देखा भी नहीं कि इससे एक्स्ट्रा आपको क्या दूँ। लेकिन आज आप देखिए कि हम कहाँ पढ़े हैं। और आप यहाँ एक और खूबसूरत रब पिछली आयतों से भी देखिएगा, पीछे मूसा के असा मारने का जिक्र था पत्थर पे, तो 12 चश्मे फूटे, सबको पानी मिल गया। ये पहली मिसाल है। कहते हैं पानी निकल जाता था ना, उसके बाद एक हल्की सी धार बन के चलता रहता था जिसको भी थोड़ा बहुत लेना हो। ये दूसरी मिसाल है। उसके बाद देखिए बनी इसराइल के सर पे कोहे तूर खड़ा किया गया, सब गिर पड़े। ये यह भी तुम इन खशियत अल्लाह की मिसाल है। थोड़ा सा पीछे जाएं तो फिरौन डूबा, उससे पहले मूसा ने पानी पे असा मारा तो वो कत्तौदिल अजीम पत्थर बन गया। ये अल्लाह की बातें हैं जो आपको मुझे समझाई जा रही हैं कि असल बात ये है कि अल्लाह ताला बंदे का अमल जाया नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा खलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कसरतु मसाइलिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम। इसमें कोई शुबा नहीं कि तुमसे पहले लोगों को सवालात की कसरत ने और अपने नबियों की मुखालफत ने हलाक किया। तो फिर आज उम्मत मुस्लिमा क्यों हलाक होती हुई दिख रही है? ये जंग के खतरे क्यों मुसल्लत हैं? ये धमकियां क्यों मिलती हैं? आप इन आयतों को पढ़ें, क्या आज हमको लगता है हमारे दिल नरम है या दिल सख्त है? अल्लाह ताला तो सूरत हशर की आखिरी आयतों में कहते हैं लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरईतहु खाशियं मुतसद्दियं मिन खशयतिल्लाह। हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो अल्लाह की खशियत से कांपने लगता। लेकिन हम पूरा पूरा कुरान पढ़े हुए, हम नहीं कांपते। पत्थरों की सख्ती को दिल की सख्ती से जरा मिला भी लें, एक चार्ट बनाइए अपने नोट्स में, एक तरफ लिखिए पत्थर की सख्ती और उसके अपोजिट लिखिए दिल की सख्ती, क्या रिलेशन है? पत्थरों से चश्मे फूट निकलते हैं, دل کی سختی، انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے۔ پھر دوسرا فرق، پتھروں سے پانی نکل آتا ہے۔ اس کے اپوزٹ، انسان کے دل سے خیر کا کوئی جذبہ نہیں نکلتا، نہ مال نکلتا اللہ کے رستوں میں، نہ نیکی کا کام ہوتا ہے۔ اور پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ کا نام سنا ہوگا۔ اس کے برعکس دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں لرزتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، اور نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ سوال ایک لکھیے کہ اللہ کے نبی نے دل کی سختی کی کوئی نشانیاں بتائی ہیں تاکہ میں اپنی بھی تو دیکھ لوں، میرا ہی دل نہ سخت ہو۔ ضرور ڈاکٹر سے جا کے پوچھنا ہے، گھر میں ہی علاج کر لیں تو بالکل بتائیں۔ مستند بزار کی روایت ہے 3230 اور حضرت انس راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ چار چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں، یعنی وہ بندہ بڑا بدبخت ہے جس میں نمبر ایک اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، پھر دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا اور لالچی بن جانا۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، یہ تو پلے سے باندھ لیں، میں نے نہیں بولنا۔ دل سخت ہو جاتا ہے اسے، کیوں؟ کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ کی روایت ابن ماجہ میں فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب آخری بات کر دیتی ہوں کہ دل کی سختی کو پھر دور کیسے کریں۔ یقین کریں بہت سارے لوگ جو دین سیکھنا چاہتے ہیں اور دین سیکھ نہیں پاتے نا، یا رکاوٹیں آتی ہیں اس کی وجہ دل کی سختی ہوتی ہے۔ تو دل کو پتھر سے تشبیہ دے کے اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دل پتھر بن جاتا ہے جب اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو دل کی سختی کیسے دور کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے کہا کیسے دور کریں؟ فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے آخرت کی یاد۔ ایک اور روایت مسند احمد کی، یہ اوپر کی جو یہ مشکات کی تھی، ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے شکوا کیا کہ میرا دل سخت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کتنے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ میرا دل سخت نہ ہو جائے، اور دل کی سختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، پتہ کیا؟ گناہ چھوٹے لگتے ہیں اور نیکیاں مشکل لگتی ہیں۔ گناہ کی محفلوں میں جانا آسان لگتا ہے، نیکیوں میں مشکل لگتا ہے۔ ہر چیز میں آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری بات تو ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں، یہ جو اس سے آگے کی آیتیں نا، یہ ساری آپ کو میرے ان لفظوں سے سمجھنی ہے پہلے جو میں بھی بولوں گی، آیتوں پہ بعد میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہود پہلے سے موجود تھے، ٹھیک ہے، اوس اور خزرج بھی تھے۔ صحابہ کو امید کیا تھی، یا کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی امید تھی؟ कि जो ही हम मदीना में जाएंगे ना, सबसे पहले हमें वेलकम करने वालों में कौन लोग खड़े होंगे एयरपोर्ट पे? यहूद। वाई? लाइक माइंडेड रिलीजियस पीपल, रिलीजियस पीपल को वेलकम करते हैं। हुआ क्या? ऑपोजिट। ना सिर्फ ये कि खुद वेलकम ना किया, बल्कि दूसरों के दिलों में शक डाल दिए। तो इस बात पे सहाबा का दिल बड़ा खट्टा हुआ, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूटा। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जरा देखिएगा आयत, अफतत माउना यूमिनू लकुम, क्या तुम ये तमा रखते हो कि ये तुम पर ईमान लाएंगे? देखिए, ब्राह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है इधर, और सहाबा लकुम जमा की जमीर है। ए मदीना में आने वाले मुसलमानों, सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें ये उम्मीद लग गई है इनसे कि ये तुम पर ईमान ले आएंगे? वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्माउन कलाम अल्लाह, हालांकि बेशक था एक गिरोह इनमें से जो सुनता था कलाम अल्लाह का। अब बहुत गौर से सुनिए, लफ्ज कलाम अल्लाह से यहां क्या मुराद है? तौरात। लिखें, यह आपको सवाल असाइनमेंट में जरूर देना चाहिए कि आयत 75 में कलाम अल्लाह से क्या मुराद है? तौरात। माजी की बात उनको बताई जा रही है कि ये तुम्हें देखकर तुम पे कैसे ईमान लाएंगे, ये तो अल्लाह की कलाम को सुन चुके। लेकिन सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर इन्होंने बदल दिया उसको, मिम्बादी मा अकलुहु, इसके बाद कि उसको समझ गए, अकल में आ गई बात। वहुम यालमून, और वो सब जानते हैं, इल्म तो उनके पास है। क्या समझ आई? कि तुम्हें देखकर ये इस्लाम कबूल करेंगे, ये तो अल्लाह का कलाम सुन के ना मान सके। और पीछे गाय का वाक्या इतना अहम सुना पड़ा, उसको देख कर ना माने, तो मतलब क्या था कि ये नहीं मानेंगे। कहते हैं कि ये आयत अंसार के बारे में नाजिल हुई, जो यहूद के हलीफ थे, और उनके साथ दोस्तियां भी थी और हमसायागिरी भी थी। वो चाहते थे कि काश यहूदी इस्लाम ले आए। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा, नहीं, ये तुम्हारे दोस्त तुम्हारे कहने पर इस्लाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये इससे भी बड़ी चीजें पहले अल्लाह की देख चुके हैं, लेकिन नहीं मानेंगे। तो फिर इनको उम्मीद ना दिलाओ, फिर इनको दावत ना दो? जी नहीं, पीछे भी तो बात आई थी, आंजर तो ममलम तुंजर हमला यूमिनून, आप बुलाते रहे, आपको बुलाने का तड़पने का अजर है, ये नहीं मानेंगे, इनका मामला अल्लाह के साथ है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक अंदाज इख्तियार किया। इसमें जो अहम बात है ना आपके मेरे लिए इस वक्त गौर की, वो क्या है? कलाम अल्लाह तो हम समझ गए, लेकिन यो हर्रिफ होना हो, सवाल पैदा होता है कि यहूद किस तरह की तहरीफ करते थे। तहरीफ समझते हैं, तब्दील कर देना, बातों को बदल देना। तो यहां से समझ लीजिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए, औस व खजरज के चंद लोगों की कोशिशों से मक्का से मदीना के रास्ते खुले, मदीना में ही उन्होंने यहूद से नबी सल्लम के बारे में सुना हुआ था। तो आपको पता है कि जब मक्का मौसमा में हज के मौके पे बैत अकबा, याद कर लीजिए, जब उनसे नबी सल्लम की मुलाकात हुई, इस्लाम की दावत पेश की, तो उन लोगों ने आपस में क्या कहा था? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई कहीं जाए और वहां किसी ऐसी शख्सियत को मिला है जिनके बारे में पहले से कहीं सुना हो कि वो उस मुल्क में रहते हैं या उस शहर में रहते हैं, तो वापस एक दूसरे को कहेंगे, तुम्हें पता है ये वही नबी है जिसका जिक्र हमसे यहूद करते थे। ऐसा ना हो कि वो पहले ही ईमान ले आए, चलो हम जल्दी से ईमान ले आते हैं और इस नेमत को हासिल कर लेते हैं। थोड़े से अरसे में मदीना के घर घर में इस्लाम फैल गया और जौक तर जौक लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। जब इस्लाम मदीना की गलियों में आम हुआ, तो मुसलमानों ने अपने मिलने वाले यहूद को भी दावत दी, लेकिन उनका रवैया देखकर हैरान रह गए कि ना सिर्फ ये कि वो ईमान लाने को तैयार नहीं, बल्कि आए दिन उनकी तरफ से कोई गलत फहमी पेश करने की कोशिश की जाती है। अब मुसलमानों को एक तरफ तो इससे परेशानी हुई, दूसरी तरफ उन्हें इस्लाम के दुश्मनों और मुनाफिकों की बातें सुनना पड़ी कि देखो, अगर ये वही पैगंबर होते जिनका यहूद को इंतजार था, तो यकीनन यहूद आगे बढ़कर ईमान लाते और इनके बड़े बड़े उलमा तो ईमान से पीछे ना होते, लेकिन ये तो नहीं आगे बढ़ रहे, तो मतलब दाल में कुछ काला है। इससे फिर इस तरह फैला था मदीना के मुसलमानों में, बात समझ आई? मसलन देखिए, आप यहां कुरान पढ़ने आते हैं, कोई पहले से आपसे जिक्र करे, इधर एक इदारा है, वहां कुरान पढ़ाते हैं, वो इधर है वो उधर है, और आप एक दिन इधर पहुंच जाए, लेकिन आप उनको ना देखें इधर, आप उनसे फोन करें, किधर है भी, मैं तो उधर गई जहां थे तो आप नहीं है। तो वो अगर एक दिन, हाँ आज छुट्टी, शॉपिंग करनी थी ना आज, फिर ये भी था वो भी था, आप कहेंगे 2 दिन 3 दिन, जब एक हफ्ता गुजर जाए और आप पूछें अच्छा वो नहीं है, वो कहते वो कौन, वो तो इधर है ही नहीं, उनका तो नाम किसी ऑफिस के खाते में नहीं है, तो फिर आपको शक होगा ना, मुझे इधर भेजा खुद नहीं आई। ये हो रहा था मदीना में कि ओहो ये नहीं आ रहे तो कोई गड़बड़ होगी। तो एक क्योस था, उसको अल्लाह तोड़ रहे हैं, क्या फतत मऊ नहीं हो मैनू, बददिल ना हो। असल बात यह है कि कौमों ने अपने नबियों के साथ और बाद में हक वालों के साथ यही मामले किए, और इनका एक गिरोह था, कद कान फरीको मिनहुम। लिखिए यहां से आगे सबक एंड तक हम तीन किस्म के यहूद के गिरोहों से मिलेंगे, उलमा यहूद, आम यहूद और खुशफहमियों में मुबतला उम्मीदीन। तहरीफ की 2-3 बातें नोट कर लें। तहरीफ कैसी की थी इन्होंने तौरात में, मसलन आप देखिए कि हजरत इस्माइल और इसहाक 2 भाई थे। इसहाक अलैहिस्सलाम को ये पसंद करते हैं, कहते थे ये ब्लेसड सन है, और नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह हजरत इस्माइल को आज की बाइबल में भी ये क्या कहते हैं, कर्स्ड सन। कर्स किसको कहते हैं, लानत को। चूंकि वो कर्स था तो अब उसकी सारी नस्ल भी कर्स्ड है, तो उसको तो जिबा नहीं किया गया, तो इसको जिबा कर दो, ये इस कौम का सोच है। फिर इसी तरह देखिए सफा मरवा का तذکرہ है कि हजरत इब्राहिम ने जब हजरत इस्माइल को जिबा किया था तो मरवा पहाड़ के पास ले गए, इन्होंने उसको मूरा कर दिया है, जो फलस्तीन के एक पहाड़ का नाम है। मक्का के लफ्ज को इन्होंने सक्का कर दिया है। यानी तहरीफ 2 तरह की होती है, एक लफ्जों में तहरीफ, लफ्ज ही बदल दें, जैसे कुरान की आयत पढ़ते हुए आप सीन को स्वाद कह दें, मिसाल है, या गुना को सवाब कह दें। एक होती मानवी, इन्होंने तौरात में हर तरह की तब्दीली की, हजरत इस्माइल की कुर्बानी की बजाय उन्होंने हजरत इसहाक का नाम ले दिया, मरवा की बजाय उन्होंने मूरा पहाड़ी को कह दिया। ये साबित करना चाहते थे कि जिबा का जो वाकया था ये अरब में नहीं हुआ बल्कि फलस्तीन में हुआ था, जबीहुल्ला के नाम में इस्माइल की बजाय इसहाक के नाम को रख दिया, और इबारत को कैसे बदलते थे, दूसरा के कोई जुमला बढ़ा दिया कोई कम कर दिया। मसलन हजरत इब्राहिम के हिजरत के वाक्य में तब्दीलियां की, उनका ताल्लुक बैतुल्ला और मक्का मुअज्जमा से काटा, और ये साबित करना मुश्किल हो गया कि हजरत इब्राहिम कभी हिजाज में आए थे और उन्होंने बैतुल्ला की तामीर की। तो लफ्जों में तो ये किया होगा, मानों में क्या चेंज की। मसलन 2 मानी निकलते ना अगर किसी लफ्ज के, तो उसमें से वो मानी ले लेते जो इनके अकायद के मुताबिक था, दूसरा छोड़ देते, सियाको सबाक से काट देते, मतलब कॉन्टेक्स्ट से नहीं रखते उसको। फिर इसी तरह देखिए इब्रानी जुबान में इबन बेटे को भी कहते हैं और बंदे और गुलाम को भी कहते हैं, तो उन्होंने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया इबन के तर्जमे में। फिर इसी तरह आपको था अब बाप, इसका तर्जमा बाप भी होता है और रब भी होता है, तो इन्होंने अल्लाह को रब के मानी की बजाय अब यानी असल बाप के मानों में कर दिया। सबसे बड़ी इनकी तारीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में थी, आपकी निशानियां आपकी बातें सब कुछ इनकी आयतों में मौजूद थी, लेकिन इन्होंने उन सब को बदल दिया और अल्लाह ताला ने बता दिया मिम्बा दिमा कलू। आज भी अब बताइए ये तब्दीलियां कोई अनपढ़ बंदा कर सकता है, कुरान में आज तब्दीली करे तो अनपढ़ करेगा तो लगेगा साहब कि ये तो कुरान ही नहीं है, कोई पढ़ा लिखा ही करेगा ना। तो लिखिए किसी कौम का जवाल कब आता है, जब वहां के दीनदारों के दिल सख्त हो जाते हैं, वो किसी खास सोच को प्रमोट करने के लिए सीधे साधे हुक्मों का इनकार कर देते हैं, तर्जुमों में मानी बदले। आज भी तौरात असल में कहां थी इनको नहीं पता। नतीजा क्या हुआ कि इनके उलमाए सू ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक किताब को बदल दिया। वो कहते हैं ना कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं या किताब को बदल देते हैं, तो अल्लाह कहते हैं जिस कौम के मजहबी उलमा किताब को बदलने में कमी ना करें वो कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे।